ओम चंद।
हम सभी का लक्ष्य है क्या? आज की मुरली के अनुसार अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना और संसार को कैसा कर देना, संसार और संस्कार, संसार में रहते हुए संसार को देखते हुए, उसकी वस्तुओं और पदार्थों का उपयोग करते हुए अनासक्त हो जाना, ताकि ये संसार भी हमारे लिए सुखदायी हो जाए और हमारे संस्कार भी हमारे लिए सुखदायी हो जाएं। क्योंकि संसार में किसी को दुख दे रहे हैं उसके अपने ही संस्कार, और किसी के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रहे हैं उसके ही अपने संसार के लोग। दोनों से हमें इस तरह मुक्त हो जाना है कि संसार में रहें लेकिन संसार के लोग अपना प्रभाव हम पे न डाल सकें, हमारा प्रभाव उन पर पड़ता रहे। आज की मुरली आप सबको ख्याल होगी, कुछ बहुत अच्छे गुह्य रहस्यों को लिए हुए ये मुरली थी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ज्ञान की कुछ अच्छी बातें तो शास्त्रों में भी लिखी हैं, धारणाओं की बहुत ऊंची ऊंची बातें ग्रंथों में भी वर्णन की गई हैं, और उनको जानने वाले विद्वान आचार्य और सन्यासी भी बहुत हैं। परंतु बाबा ने अपने ज्ञान के साथ एक बहुत सुंदर बात जोड़ दी है, और वो ये है कि रोज मुरली सुनना, क्लास करना। क्या फायदा होता है इससे, रोज मुरली सुनने से क्या फायदा होता है? इन सब बातों के साथ साथ रोज हमारे विचार बदलते हैं, और विचार बदलने से संसार और संस्कार दोनों बदल जाते हैं। अगर हम अपने जीवन परिवर्तन को केवल इस दृष्टि से देख लें कि जीवन परिवर्तन और ज्यादा कुछ नहीं, विचार परिवर्तन है, हम अपने विचारों को ठीक कर लें कलयुग के प्रभाव में, चाहे भक्ति के प्रभाव में, चाहे कलयुग की मर्यादाओं के प्रभाव में, मनुष्य के विचार काफी दूषित, कमजोर, निगेटिव इस तरह के हो गए हैं। बाबा रोज ज्ञान सुनाकर हमारे विचारों को बदलते हैं। आप सबने देखा होगा, कोई भी समस्या लेकर जब आप क्लास में जाते हैं सवेरे, तो क्लास के बाद समस्या का हल लेकर आते हैं। मधुवन में आते ही सभी लोग इसलिए तुरंत फ्रेश हो जाते हैं कि यहाँ ज्ञान जो सबके पास है वो इमर्ज हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है, अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, और संसार की समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। तो बहुत आवश्यक है अपने ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मुरलियों के द्वारा अपने विचारों को बदलना। बहुत बहुत सहज और सूक्ष्म बात है, हम अपने विचारों को बदलते चलें। विचार ही है, मैं एक उदाहरण देता हूं, विचार ही है, आप सब भारत वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भारत की सभ्यताओं में अब तो बिगड़ती जा रही है सब बात, लेकिन अब से थोड़ा समय पहले कन्या की शादी करके किसी घर में भेज दिया, घर अच्छा नहीं है, पति भी अच्छा नहीं है। कन्या क्या सोचती थी कि अब मुझे इसी घर में रहना है। एक विचार था, केवल एक संकल्प है कि अब मुझे इसी घर में रहना है, इसलिए सब कुछ सुनना है, सहन करना है। विदेशों में आप जाएं, वहां विचार दूसरा है, मुझे इनके साथ क्यों रहना है, विचार बदल गया तो तुरंत डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। विचार है जो मनुष्य के जीवन का निर्माण कर रहे हैं, चाहे समस्याएं पैदा कर रहे हैं, चाहे समस्याओं को समाप्त कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, एक व्यक्ति हम में से अगर ये सोच ले, संकल्प बना ले, विचारधारा बना ले कि मुझे सहन करना है, तो उसके पास सहन शक्ति आ जाती है। और दूसरा व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मैं क्यों सहन करूं, मेरा जन्म कोई सहन करने के लिए हुआ है क्या, मैं जीवन भर सहन ही करता रहूं, तो उसकी सहन शक्ति नष्ट हो जाती है। हमारे विचार बहुत बड़ी चीज है। विचार जब गहन चिंतन में चले जाते हैं तो उससे वृत्ति का निर्माण होता है। बहुत लोग सोचते हैं ये वृत्ति क्या होती है, वृत्ति के साथ मन का प्रयोग नहीं किया गया, मन की वृत्ति नहीं कहा जाता, चित्त की वृत्ति कहा जाता है। मन के संकल्प, चित्त की वृत्ति। मन जब सूक्ष्म रूप ले लेता है उसको चित्त कहते हैं। हमारा चिंतन, हमारा मनन जब सूक्ष्म रूप ले लेता है उसको चिंतन कहते हैं। जब वो और सूक्ष्म रूप ले लेता है वो हमें मगन करने लगता है और उससे निर्माण हो जाती है हमारी वृत्ति, जिसका आज बाबा वर्णन कर रहे थे। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। आज बाबा की मुरली में एक दो बात बहुत गहरी थी कि बेगमपुर के बादशाहों की बादशाही में क्या नहीं आ सकती, माया नहीं आ सकती, उसकी चाल नहीं चल सकती कोई। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात थी कि जो व्यक्ति, जो आत्मा नशे में है, ईश्वरीय नशे में है, उसके नशे के वाइब्रेशंस स्वयं के लिए और औरों के लिए क्या बन जाते हैं, छत्र छाया बन जाते हैं। सभी को याद रखनी है ये बात, बहुत बहुत काम की है। जो आत्मा नशे में स्थित है उसके नशे के वाइब्रेशंस उसके लिए और औरों के लिए छत्र बन जाते हैं, छत्र छाया बन जाते हैं। एक घर में अगर एक व्यक्ति श्रेष्ठ नशे में रहता है, स्वमान में रहता है, तो उसके वाइब्रेशंस उसके जीवन के परिवर्तन के लिए और जहां तक उसके वाइब्रेशंस फैलते हों, कम से कम अपने परिवार के परिवर्तन के लिए सहज काम कर देते हैं। अगर किसी के होते हुए परिवार बदलता नहीं, एक समस्या है ब्राह्मणों के पास, हम ज्ञान में चलते हैं, हमारे परिवार विरोध करते हैं, बिल्कुल एंटी हैं, गाली देते हैं, दबाते हैं, बंधन डालते हैं, बहुत सहन करना पड़ता है। इस सब का उत्तर इस एक महावाक्य में है। अगर एक मंदिर में पत्थर की जड़ मूर्ति इष्ट देवी चारों ओर के वातावरण को शांत कर देती है, कर देती है ना, हम सब जानते हैं मूर्ति पत्थर की है, उसमें कोई चेतनता नहीं, हम सब जानते हैं वो भगत भी झूठे हैं जो वहां जाते हैं, फिर भी मंदिर के चारों ओर शांति का माहौल रहता है। तो जब एक जड़ इष्ट देवी अपने चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैला सकती है, अगर एक गृहस्थ में एक चेतन इष्ट देवी या इष्ट देवता हो तो क्या उस घर में अशांति, आपदाएं, परेशानियां, विघ्न और समस्याएं हो सकती हैं? सोचने की बात है। होती हैं, इसका कारण है कि आत्मा अपने श्रेष्ठ नशे में स्थित नहीं है। आप अभ्यास करके देख लें, आपके घर में अगर अशांति है, रोज 5-10 मिनट मैं आत्मा मास्टर शांति दाता हूं, इस नशे में चलें आप और देखें आप, एक ही दिन में परिवर्तन हो जाएगा घर का माहौल। ऐसा असंभव है कि कोई भी अच्छी आत्मा किसी घर में रहती हो और उस घर में अच्छाई का प्रभाव न हो। लेकिन आज बाबा की मुरली पर आप ध्यान दें, बाबा ने कहा है नशा किसमें हो, नशा साकार में हो, नशा संकल्प बोल और कर्म और मुस्कान से दिखाई दे, नशा छुपा हुआ न हो। ये बात थोड़ी सी जान लेने की है। नशा साकार में कब आता है, कब नशा छुप जाता है और कैसे हम नशे को प्रत्यक्ष में लाएं, जो दूसरों को भी दिखाई दे और जिस नशे का प्रभाव हमारे ऊपर भी लंबे समय तक छाया रहे। उसकी एक ही बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच तो लेता है कि मैं इष्ट देवी हूं, इष्ट देव हूं, बस सोच लिया, एक संकल्प कर लिया और दूसरे ही सेकंड वो बात भूल गई, या कोई केवल इसको मंत्र की तरह रिपीट करते हैं कि मैं इष्ट देवी हूं, तो नशा क्षणिक होता है, कुछ सेकंडों के लिए होता है और उसके बाद नष्ट हो जाता है। नशे को अगर हम साकार में लाना चाहते हैं तो उसकी विधि है क्या, क्या विधि है उसकी, और बोलो, और बोलो। नशे को हम अपने साकार स्वरूप में लाना चाहते हैं, उसका आधार है उस नशे का गहन चिंतन, इसकी कमी हो जाती है। मैं एक महान आत्मा हूं ये सोच के छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। मैं महान हूं इसकी गहराई में आप चलें, इसको अपने गहन चिंतन में ले आए और इतने गहन चिंतन में ले आए ताकि हमारी आंतरिक वृत्ति ये स्वीकार कर ले, हे आत्मा तू सचमुच महान है, तो इससे जीवन महान बनता चलेगा। मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत बता देता हूं यहां, जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है, मनोविज्ञान, वो उसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। और अब जब हम सब योग का अभ्यास कर रहे हैं तो इस सिद्धांत के आधार से हम अपने संस्कारों को और संसार को बदलने के लिए किस तरह काम करेंगे वो स्पष्ट हो जाएगा। एक छोटा सा सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिकों ने उसको जरा एक लैंग्वेज दे दी है, मैं बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में आपके सामने रखूंगा, माताएं भी समझ सकती हैं। साइकोलॉजी की भाषा आप जानते हैं, माइंड के दो स्वरूप, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड, तीसरा भी है लेकिन उसकी जरूरत नहीं। दूसरा शब्द उसको दिया गया है, एक एक्सटर्नल माइंड, एक इंटरनल माइंड, आंतरिक मन और बाह्य मन। तो सिद्धांत है कि अगर हम अपने बाह्य मन को शांत कर दें, बाह्य मन को शांत करने के बाद अपने अंतर मन को जो भी संकल्प हम दे देंगे वो उसको धारण हो जाएगा। बहुत बड़ा सिद्धांत है, अर्थात बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम अपने मन को शांत कर लें, शांत का अर्थ सब समझते हैं, वो हमारे कंट्रोल में हो जाए, उसमें ज्यादा संकल्पों की उधेड़ बुन उथल पुथल न रहे, शांत स्थिति में मन पहुंच जाए, तो हम अपने मन को जो भी अच्छा संकल्प देंगे बुद्धि उसको धारण कर लेगी, वो जीवन बन जाएगा। और हमारा मन कब शांत होता है, समय कौन सा है, सवेरे आंख खुलते ही प्राय मनुष्य का मन शांत है, शाम के समय भी जब सूरज ढलता है तो प्रकृति की शांति के साथ साथ मनुष्य का मन शांत होने लगता है। उस समय हम थोड़ा सा अटेंशन देकर अपने मन को शांत कर लें, सवेरे उठते ही हम जरा सा अटेंशन दें, चेक कर लें कि हमारा मन इधर उधर न भाग जाए और अपने को एक संकल्प दे दें कि हे आत्मा तू विजयी रतन है, करके देखेंगे आप ये तो विजयी रतन बन जाएंगे। सवेरे उठ के ही मन को शांत करके एक संकल्प आप दे दें कि हे आत्मा सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सारा दिन हर कर्म में सफलता होगी, बहुत बड़ा वरदान है ये बाबा का, हम सभी ब्राह्मणों को इसका फायदा उठा लेना चाहिए। फायदा उठाने का तरीका ये है, आपको याद दिला दें, बाबा ने अपनी मुरली में कहा है अब से 2 साल पहले, वरदान में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। इस भाषा को तो हम सब समझते ही हैं, आग जैसी परिस्थितियों को पानी जैसी शीतल बना देने की शक्ति है वरदानों में, और ये वरदान हम सबको प्राप्त है समान रूप से। अनुभव होता है कौन कितना समय पर वरदानों को स्मृति में लाते हैं। सवेरे ही अपने मन को शांत करके अच्छे संकल्पों में स्थित करके आप जो बनना चाहते हैं इस जीवन में, वो थॉट्स, वो विचार अपने मन को देने लगे और आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। तो इस सिद्धांत का फायदा उठाकर हम बाबा की बहुत सारी बातों को अपने जीवन में ले आए। आपको पवित्रता चाहिए, सवेरे अपने मन को शांत कर लें, संकल्प देकर शांत कर लें, जबरदस्ती नहीं, और उसके बाद एक संकल्प दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता तेजी से बढ़ने लगेगी। तो इस तरह हम सभी ईश्वरीय नश्चे को साकार में ले आए चिंतन के द्वारा। मैं एक महान आत्मा हूं, चिंतन करेंगे इस पर, जो लिख सकते हैं उन्हें लिखना चाहिए, मैं इष्ट देवी हूं, लिखें इस पर, क्यों हूं इष्ट देवी, किसने कहा है मुझे कि तुम इष्ट देवी हो, मैं तो आज तक साधारण आत्मा थी, अब किसने कह दिया कि तुम इष्ट देवी हो, और अगर मैं इष्ट देवी हूं तो मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं, अगर मैं इष्ट देवी हूं तो मेरे अंदर क्या क्या गुण लक्षण होने चाहिए, अगर मैं इष्ट देवी हूं तो मेरे अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए। चिंतन की गहराई में आप चलें और आप पाएंगे आपका इष्ट देवी स्वरूप प्रत्यक्ष होने लगेगा, पहले आपके सामने, फिर दूसरों के सामने, और फिर वो कार्य होने लगेगा जो आज तक भक्ति में थोड़ा थोड़ा होता रहा है, कि इष्ट देवियों से लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे, यहां हमारे बोल और हमारे संकल्प दूसरों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगेंगे। तो ये है ईश्वरीय नशे में स्थित उसको साकार में लाने की विधि। बाबा ने कहा बेगमपुर के बादशाहों की बादशाही में माया आ नहीं सकती। हमें अगर बेगमपुर के बादशाह बनना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सोचना है जरा इसको भी। बेगमपुर के बादशाह का अर्थ है जिसे किस किस चीज की गम ना हो, गम तो ना हो पर किस किस चीज की नहीं, किस किस चीज की गम ना हो, हाँ बोलो, मान अपमान की गम ना हो, हार जीत की गम ना हो, लाभ हानि की गम ना हो, निंदा स्तुति सर्दी गर्मी किसी की गम न हो, लोग क्या कहेंगे इसकी गम न हो। जब भक्तों ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे और मगन हो गए, और जिनको भगवान साथ दे रहा हो वो सोचने लगे कि सारे लोग साथ छोड़ जाएंगे, तो ये चिंतन कितना अच्छा है, भगवान साथ दे रहा है और साथ लेने वाले सोच रहे हैं भगवान का साथ लेंगे तो संसार के लोग साथ छोड़ जाएंगे, ऐसी आत्माएं बेगमपुर का बादशाह बन जाएंगी। तो भगवान साथ दे रहा है, जिनके पास अच्छी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि का जरा प्रयोग करे खुलकर, भगवान साथ दे रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, कैसे फायदा उठा लेना चाहिए जब भगवान साथ दे रहा हो। केवल एक बार साथ देता है और वो भी हम सभी भाग्यवान आत्माओं को उसका साथ मिल गया है। साथ ही नहीं मिला, बहुत श्रेष्ठ बुद्धि भी उसने साथ में लाकर दे दी है। अब उस बुद्धि का प्रयोग करना है हमको उसका साथ उठाने में। आपको याद होगी पिछले बार, पिछले सीजन में बाबा हम सभी को एक बहुत अच्छी बात कह गए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात, आज तक की सभी बातों में मेरी दृष्टि में सबसे अच्छी बात है वो, आप सब में से किसी किसी ने किया होगा। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे यूज करो। किया है यूज, किस किस ने यूज किया जरा हाथ उठाएंगे, थोड़ो ने किया है, बाकी भूल गए होंगे कि भगवान साथ भी है क्या, कुछ को ये नहीं पता होगा कि साथ तो है पर यूज कैसे करें। किसी किसी के पास आजकल ऐसी बोतलें हैं पानी की बोतलें मिलती है ना आजकल, कि वो खोलना नहीं आता, पानी भर के साथ रख दिया, प्यास बहुत लगी है पर ये पता नहीं कि इससे पानी पिएंगे कैसे। तो तो भगवान तो साथ दे रहा है, उसको यूज करना बहुत अच्छे विवेक की आवश्यकता है। भगवान को यूज करना, और अच्छा विवेक किसको प्राप्त हो जाता है संगम युग पर, बोलो किसको प्राप्त हो जाता है, किन ब्राह्मणों को? उन ब्राह्मणों को जिन्होंने अपनी बुद्धि की सफाई कर ली है। आपके पास ये एक टॉपिक है, होना चाहिए कि संगम युग पर हम सब का एक महान लक्ष्य ये भी है कि अपनी बुद्धि की सफाई कर लें। अगर आप अपनी बुद्धि के दरवाजे खोल कर देखो एक दिन, तो उसमें क्या क्या भर लिया है, तो बहुत कुछ माल दिखाई देगा, और कुछ ऐसा माल जो आत्मा को बड़ा कष्ट दे रहा है। ऐसी बहुत सारा जिसको हमने खजाना समझ लिया है, हमने अपनी बुद्धि में जमा कर लिया है। अब जब हमारे पास ईश्वरीय बुद्धि है, तो हमें अपनी बुद्धि की सफाई कर देनी है। देख लें बुद्धि की सफाई किस तरह करनी है, कि बुद्धि में कितनों के लिए घृणा भर ली है, बैठा ली है बिल्कुल निश्चित रूप से कि ये व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है, निश्चित कर लिया अपने मन में, चाहे वो अच्छा हो भी गया हो। कहीं परचिंतन की बहुत गंदगी अपने अंदर भर ली है, कहीं दुर्भावनाओं की गंदगी भर ली है, कहीं बदले की भावना की गंदगी भरी है, कहीं ईर्ष्या की भरी है। जब तक ये गंदगी है, तब तक सद विवेक बुद्धि में नहीं भर सकता। बुद्धि एक बर्तन है, और उसमें सद विवेक भरने के लिए उसमें जो कुछ भरा है उसको साफ करना ही पड़ेगा। सन्यासी की एक कहानी सुनाया करते हैं ना लोग, किसी ने निमंत्रण दिया महात्मा को भोजन का। महात्मा जी अपना कमंडल लेकर पहुंच गए। सेठ जी बड़े अहंकारी थे, महात्मा जी अपने कमंडल में थोड़ा सा गोबर भी भर के ले गए थे, और कहा कि भाई तुम्हारी जो खीर पकवान है इसमें डाल दो। सेठ जी कहने लगे ये कैसे होगा, इसको पहले साफ तो करना ही पड़ेगा। बस उसने उसको वही बताया कि तुम्हें भी अगर ज्ञान चाहिए तो जो कुछ बुद्धि में अब तक भरा उसको साफ करना ही पड़ेगा। तो बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है ईश्वरीय खजाने भरने के लिए, या ईश्वरीय शक्तियों को और स्वयं ईश्वर को यूज करने के लिए। बहुत बड़ी बात कह दी है बाबा ने, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे यूज करो। सबसे बड़ी हस्ती हमारे साथ है, और उसे यूज करने का एक तरह से चैलेंज उसने स्वयं हम सबको दे दिया है। लेकिन कौन सी चीज हमें यूज नहीं करने देती उसको? अब एक छोटी सी चीज पर आ जाए, कौन सी वो है? जो बहुत सूक्ष्म चीज है और जिसमें ये संसार बहुत घिरा हुआ है। कल हमें एक भाई कह रहा था कि भाई मैंने अपने ब्राह्मण परिवार में अच्छे अच्छे ज्ञानी देखे, परंतु एक चीज देखी सब में, बात उसकी ठीक थी, कहा काम को जीतना भी सहज है, हो सकता है सहज, परंतु अहंकार को जीतना बड़ा कठिन है। है ऐसा? है ऐसा? तो ये अहंकार है मनुष्य के पास जो सर्वशक्तिवान को यूज नहीं करने देता। अहंकार के दोनों स्वरूप हैं, मैं और बुद्धि का अहंकार। और जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हैं, उसमें शीतलता भर देना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए अपने अहंकार पर। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि उसके पास अहंकार नहीं है। किसी ना किसी सूक्ष्म या मोटे स्वरूप का जीवन के किसी ना किसी कोने में छुपा हुआ अहम सबके पास रहता है, जो कहीं उसकी खुशी को गुम करता है, कहीं मनुष्य को फीलिंग दिलाता है, कहीं उसको टेंस कर देता है, तनाव में ले आता है, कहीं उसको परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, फीलिंग में लाता है, ये सब लक्षण हैं इस अहम के। अच्छे पुरुषार्थियों को अहम को छोड़ना ही चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि संसार में सभी व्यर्थ संकल्पों का बीज है मैं, और हर तरह के डिस्टरबेंस का बीज है अहम। इन दोनों से अगर हम मुक्त होते जाएं तो हमारे जीवन से व्यर्थ संकल्प भी समाप्त होते जाएं, तब हम बेगमपुर के बादशाह बने और तब हमें अनुभव होगा कि इस राज्य में सचमुच कहीं भी माया के आने का कोई चांस नहीं है। तो भगवान जिनको साथ दे रहा है और जिन्होंने उसके दिल को जीत लिया है, जिन पर उसकी दृष्टि पड़ती है, उन्हें न तो भय होना चाहिए और न चिंता। मैं अपने से एक प्रश्न पूछता आया हूं इस जीवन में बहुत लंबे समय से, और बहुत मदद हुई है उस बात की कि जब तुम्हें भविष्य का संपूर्ण ज्ञान है, क्या ज्ञान है भविष्य का? संपूर्ण ज्ञान एक शब्द में है कि हमारा भविष्य, हरेक का भविष्य पहले से ही निश्चित है ना? सभी को पता है इस बात का, हर क्षण हर कदम निश्चित है। तो मैं अपने से पूछता रहा हूं, कहीं भी किसी भी बात में तुम्हें चिंता क्यों होती है? हर मनुष्य के पास कहीं ना कहीं चिंता का स्वरूप आता है, जबकि हमें ये पता है कि सब कुछ पहले से निश्चित है। इस बात पर जितना हम चिंतन करेंगे और इसको अपने नशे में ले आएंगे, उतना ही जीवन निश्चिंत होता जाएगा। और हमारे जीवन का एक लक्ष्य ये भी है संपूर्ण बनने में, कि हम संपूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएं, संसार की कोई भी चिंता हमें न हो, क्योंकि आने वाला समय हम सभी को पहले से ही संकेत देता है कि अब अपने को तैयार करो। किस चीज के लिए? विनाश काल हमें संकेत और संदेश दे रहा है कि अब अपने को तैयार करो। किसके लिए और किसके लिए? माताएं बताएंगी किसके लिए तैयार करो? घर जाने से पहले बहुत कुछ और भी होना है ना, घर ऐसे ही नहीं चले जाएंगे कि चलो घर चल दिए हैं। एक लाइन में अब हम सबको तैयार करना है, सब कुछ नष्ट होता हुआ देखने के लिए। सोच लें आप अच्छी तरह, सब कुछ जो कुछ विनाशी है वो हम जानते हैं कि हमारे सिवाय सब कुछ विनाशी है, आत्मा के सिवाय सब कुछ विनाशी है, जो कुछ हमने इकट्ठा किया है बहुत दिनों से मेहनत करके वो सब विनाशी है और वो सब विनाश हो जाएगा। हमें अपने को तैयार करना है इस सब के लिए कि जो कुछ अब होगा उसे हम सहज भाव से देख सकें, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है अगले सालों में वो हमारी अपेक्षा से, हमारे विवेक से बहुत परे की चीज है, उसका हम में से किसी को भी अभी कोई ज्ञान नहीं है। परंतु सब कुछ नष्ट होगा, धरती का ही संपूर्ण परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन, एक विशाल परिवर्तन, छोटी सी बात नहीं है वो, सब कुछ हमें देखना है, उसके लिए अपने को तैयार करना है। और उसकी तैयारी छोटी तैयारी नहीं है, बहुत विशाल तैयारी है। हमें बार बार अपने चित्त में ये बात बैठा देनी है कि सब कुछ विनाशी है। और दूसरी चीज जो हमें बहुत काम आए, जहां भी मेरा होगा वहीं बहुत बहुत कष्ट होगा, और हम सबको कष्टों के सहित घर नहीं जाना है, कष्टों को किसमें बदलकर, संपूर्ण सुख में बदलकर घर जाना है, सुखमय स्थिति में घर जाना है। हम सब की स्थिति दुख में नहीं हो सकती, अंत में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब के वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को सुख देंगे अंत में। जब चारों ओर दुख की अति की लहर होगी, तब हमारा सुख उनके दुखों को कम करेगा। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब विनाश होगा हम यहां आबू में भाग आएं, ऐसा कुछ संदेश मिल जाए, मकान बना लें इधर कुछ तो इधर आ जाएंगे, तो शायद सेफ रहेंगे, मरेंगे नहीं। परंतु जिंदा रहना तो हमारा लक्ष्य भी नहीं है, या है किसी का लक्ष्य ही मरना है। बाबा तो कहते हैं ना, तुमने कालों के काल को बुलाया है। जब बुलाते थे तब तो नहीं सोचा था ना कि किसको बुला रहे हैं, तो अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है तुम सब ने। तो इसलिए आबू में भाग आएंगे और यहां मरेंगे नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दूसरे, अगर इष्ट देव ही अपने स्थान छोड़ के भाग लेंगे तो भक्तों का क्या होगा, भक्त भी भागेंगे पीछे पीछे, है ना। इसलिए आज के बाबा के ये महावाक का आप अच्छी तरह समझ लें कि हमारे नशे के वाइब्रेशंस हमारे लिए और दूसरों के लिए छत्र छाया का काम करेंगे, करते हैं। हमारे जितने भी भक्त हैं संसार में, चाहे हम कहीं भी हों, हम नशे में स्थित हैं, उसके वाइब्रेशंस संसार के कोने कोने में हमारे भक्तों को पहुंच रहे हैं। जो विश्व महाराजन बनने वाले हैं उनके वाइब्रेशंस उनकी सारी प्रजा और भक्तों को स्वतः ही पहुंचते रहते हैं। इसलिए वहीं रहना है जहां विनाश होगा, और रहना इसलिए है कि महान आत्माओं की उपस्थिति, उनका नशा वहां की अनेक आत्माओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो अगर सुरक्षा प्रदान करने वाले घबरा जाएंगे या वहां से छोड़ के भागेंगे तो सुरक्षा आत्माओं को नहीं मिल पाएगी। भक्ति में भी जिन इष्ट देव देवियों के नाम को याद करके ही भक्त लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने को, वो जब चेतन में यहां होंगे और प्रत्यक्ष होंगे तो उनके होने से आसपास की लाखों आत्माओं को सांत्वना मिलती रहेगी कि हमारे इष्ट देव, हमारे पूर्वज, महान आत्माएं हमारे पास ही हैं। तो अपनी महानता को स्वयं समझना है। आज की मुरली भी हमें यही कहती है, पहला नशा मैं कौन हूं, जब ये भूल जाते हैं तो अनेक बातें समस्या के रूप में दिखाई देती हैं। समस्याएं कुछ नहीं हैं, हमारे चिंतन के कारण बड़ी दिखाई देती हैं। किसी ने आपकी ग्लानी कर दी और आपको बहुत फीलिंग आ गई, आपको बहुत समस्याएं अनुभव होंगी, और चाहे सारा संसार ग्लानी करता रहे और हमें फीलिंग ही ना आए तो हमें कोई समस्या अनुभव नहीं होगी। आज के बाबा के ये महावाक्य भी अंडरलाइन सभी कर लें कि सूर्य के आगे, याद है ना, चाहे कितने भी काले बादल आ जाएं, लेकिन उसके प्रकाश को ढक नहीं सकते, और आखिर हटना पड़ता है बादलों को ही। हम सभी का प्रकाश अगर इतना तेज हो जाए तो सारे के सारे काले बादल न केवल हमारे सिर से बल्कि सारे संसार पर छाए हुए विघ्नों के काले बादल भी तेजी से छट जाएंगे। तो अपनी शक्तियों को पहचानना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस संगम युग की, कि हम स्वयं को और स्वयं की शक्तियों को पहचाने। उस नशे में रहते ही विघ्न और समस्याएं साफ हो जाते हैं। आप अनुभव कर लें अपने अपने घरों में, जब आपके पास समस्याएं हों, चारों ओर अगर आप समस्याओं से घिर भी गए हों, बिल्कुल जीवन पर बात आ गई हो, किसी एक अच्छे वरदान के नशे में स्थित हो जाएं, और आप स्वतः ही अनुभव करेंगे बिना कुछ पुरुषार्थ किए वो सब की सब उल्टी बातें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम अपनी भावनाओं के द्वारा अपने शत्रुओं को भी मित्र में बदल सकते हो, मित्र बना सकते हो। अब आप सब जिसकी इंतजार कर रहे हैं, कल वो दिन हम सब के सामने है, तो क्या करेंगे कल? मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, कल सभी उनका अभ्यास करते रहेंगे और कल का दिन ऐसा ही सभी समझेंगे कि योग भट्टी का दिन है। बाबा श्याम को मिलेंगे कल, यही टाइम हो जाएगा, अब से 24 घंटे हैं और ये 24 घंटे ईश्वरीय मिलन में बीतें, मिलन में ही सोएंगे, मिलन में उठेंगे और सारा दिन मिलन की खुशी और नशे में रहेंगे, तो कल का ये दिन और आप सब का यहां आना संपूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। तो पहले तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जो अच्छा अनुभव करना चाहते हो, सभी अच्छे अनुभवों के लिए यहां आए हैं, तो कल बोलना नहीं है, तो मंजूर है ये बात? बात करनी है तो करनी है केवल बाबा से, देखना है तो केवल स्वयं को, और बात करनी है तो केवल स्वयं से, देखना है तो केवल ऊपर वही दिखाई दे जिससे मिलन होना है। कल ऐसा स्वयं को तैयार करेंगे। इसके साथ ही जोड़ देते हैं, भोजन बहुत हल्का। माताओं को तो आदत थी भक्ति में व्रत रखने की, भाई भी कोई कोई रखते थे, हम यहां व्रत तो नहीं रखाते हैं किसी से, लेकिन जो कम खाएं कल के दिन, मैं अपनी भाषा में कहूंगा उनको समझदार, क्योंकि भोजन, वैसे अब तो समय हो गया है, परंतु भोजन योगियों के लिए अगर भारी है तो वो बुद्धि को भारी करता है। वो योगी जो भोजन का संयम नहीं रख सकते कभी योगी नहीं बन पाते, इसलिए भोजन को हल्का करना है, कम से कम कल एक दिन आधा कर दें पूरा ही। इससे आपको सवेरे से ही बहुत अच्छे अनुभव होने लगेंगे। सवेरे आंख खुलते ही पहला संकल्प करेंगे कि आज हमारा मिलन उस सर्वश्रेष्ठ हस्ती से होगा जिससे मिलने के लिए हम दो युग से इंतजार करते आए हैं, और इसी खुशी के साथ बाबा से रूढ़िहान प्रारंभ कर दें। रूढ़िहान उल्टी नहीं, शिकायतों की नहीं, कमजोरियों की भी नहीं, मिलन की, प्राप्तियों की, आनंद देने वाली, चित्त को खुश कर देने वाली बाबा से रूढ़िहान करें, उससे बात करें, अपने भाग्य को देखें कि कहां है हमारा भाग्य, संसार कहां और हम सब कहां। बड़े बड़े सन्यासी ऋषि मुनि जिसको हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में ढूंढ रहे होंगे, वो आज हमारे सामने होगा, क्षण भर के लिए नहीं, घंटों के लिए। इस तरह अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं, सवेरे से ही ऐसी तैयारी अपनी कर लेंगे, और सवेरे का समय पूरा ही मुरली क्लास तक यहां आने तक ऐसा ही समझेंगे कि आंख खुलने से और क्लास के समय तक का टाइम पूरा योग अभ्यास करने का है। चाहे स्नान करें, चाहे कोई सब्जी काटने जाएं, पूरा योग अभ्यास में ही बिताना है। और आंख खुलते ही देख लें, हम सबको मालूम है, बाबा की मुरलियों से भी हम जानते हैं, बहुत सालों से जो सुनी है, कि जैसी खुशी हम सबको है बाप से मिलने की, वैसी खुशी बाबा को भी है अपने बच्चों से मिलने की। क्योंकि उसके सामने न जाने कौन कितनी महान आत्मा आई है मिलने के लिए, जिसको हम नहीं जानते वो जानता है। न जाने कौन कितनी भाग्यवान आत्मा इस सभा में बैठी है, जिसने किसी जन्म में बहुत बड़े बड़े काम किए हों, आज वो गरीब हों या कम पढ़े लिखे हों, बिल्कुल साधारण हों, हो सकता है उसने विश्व के इस ड्रामा में हीरो पार्ट बजाया हो, तो बाबा को भी बहुत बहुत खुशी है अपने बच्चों से मिलने में। और इसलिए विशेष कल के दिन, इस मिलन के दिन, सवेरे से ही बाबा अपनी ओर से अपने सब बच्चों को अपनी किरणें देने लगते हैं, शक्तियां देने लगते हैं। तो आंख खुलते ही इन संकल्पों के साथ ये भी देखेंगे ऊपर को कि बाबा की शक्तियों का एक फाउंटेन ऊपर से हमारे ऊपर आ रहा है, निरंतर ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में सवेरे का पूरा समय स्वयं को स्थित करेंगे, काम भी करें चाहे स्नान करें, लेकिन उन किरणों के नीचे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान सूर्य की पड़ती हुई किरणें। दिन में क्लासेज भी होंगी और खाली समय भी होगा, यही सोचना है कि कल का दिन सारा ही मिलन का दिन है, मिल रहे हैं बाबा, ऊपर से नीचे आते हैं हमसे मिलने के लिए, कभी हम नीचे से ऊपर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ये खेल आप करेंगे, ड्रिल, ये एंजॉयमेंट है, ये मनोरंजन है। बाबा कहते हैं मन मना भव को मनोरंजन बना दो। सर्वशक्तिवान ऊपर से नीचे आता है हमसे मिलने के लिए, मिल के वापिस चला जाता है, फिर हम यहां से चलते हैं सर्वशक्तिवान के पास मिलने के लिए, उससे मिलकर नीचे आ जाते हैं। कभी हम फरिश्ता बनकर चलते हैं सूक्ष्म वतन में, बाप दादा से मिलकर आते हैं, कभी बाप दादा ऊपर से नीचे आते हैं हमसे मिलकर जाते हैं। इस खेल में आप अपना अधिक समय बाबा के मिलन तक बिताते रहेंगे। मौन और इस तरह का अभ्यास, योग अभ्यास, मिलन की खुशी, और साथ में जोड़ देंगे एक नशा जो आपको प्रिय हो, जिस नशे में आप ज्यादा समय रह सकते हैं, उस नशे को जोड़ देंगे और कल ये अनुभव कर लें। जिनको बहुत अच्छा अनुभव करने की इच्छा है, यहां कल के साइलेंस डे पर एक अनुभव कर लें। मान लो आप नशा लेते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूं, घंटे में एक बार इस नशे में स्थित हो जाएं। भट्टी का दिन समझ लें कल को, बुद्धि और सब बातों से निकालकर एक प्लान बना लें इस तरह का कागज पर अपने पास, कि घंटे में हर बार आपने अगर नशा ले लिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो घंटे में एक बार इस फीलिंग में आ जाएं, इस महसूसता में आ जाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तियों का मालिक हूं, और देखें क्या होता है शाम तक। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि जीवन में संपूर्णता के लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए। जीवन में गृहस्थ में अपनी सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने परिवार को सरल और सुख में बनाने के लिए क्या करना चाहिए। यह आप स्वयं जान जाएंगे अंदर ही अंदर। इस तरह कल शाम तक आप मिलन के सुख में बैठें, और जहां भी बैठने को मिल जाए हॉल में वहीं बैठ जाएं, बिना इस संकल्प के कि बाबा के सामने नहीं बैठे, क्योंकि बैठने वाले कम से कम 14,000 हैं कल, तो सभी तो बाबा के सामने नहीं बैठ सकते, जरूर किसी को दूर भी बैठना पड़ेगा, लेकिन इस विश्वास के साथ कि जहां हम बैठे हैं बाबा हमें जानता है, उसकी दृष्टि, उसकी श्रेष्ठ भावनाएं, उसके वाइब्रेशंस वहीं हम पर पहुंचते हैं। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि कई आने वाले बाबा के बच्चे इस बात से अपने को डिस्टर्ब कर लेते हैं वहां कि हमें आगे नहीं बैठने दिया, इधर बैठा दिया, और इस डिस्टर्बेंस में मिलन का सारा सुख खो देते हैं। सारे समय वही संकल्प चलता रहता है कि देखो यहां आगे बैठे थे, इसने उठा दिया हमें, कैसे खराब लोग हैं, उनको बद्दुआएं देते रहते हैं, मुश्किल से तो भगवान से मिलने आए थे, पता नहीं ये सिक्योरिटी वाले कहां से खड़े कर दिए, इन्होंने हमें उठा दिया। वही संग उनको देखेंगे और संकल्प चलाएंगे। इसलिए इन सब की आवश्यकता नहीं, जहां आपको बैठने को मिल जाए बाबा वहीं सामने है। भगवान के लिए कोई दूरी होती ही नहीं, उसके लिए कोई दीवार भी कोई काम नहीं करती, कोई बाधा उसके और हमारे बीच में है ही नहीं। ये नैनों से मिलन नहीं है, ये तो बुद्धि का मिलन है। भले ही साकार में है, नैनों से मिलन हमें दिखता है, पर वास्तविक मिलन का आनंद बुद्धि दिल के मिलन से ही होता है, आंखों के मिलन से नहीं। इसलिए सवेरे से ही बहुत अच्छी तरह सभी तैयारी करेंगे इस मिलन का संपूर्ण सुख लेने के लिए, और आप पाएंगे आप जहां भी बैठेंगे वहीं मिलन का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस नशे के साथ हम यहां से उठेंगे और सवेरे इसको कंटिन्यू करेंगे कि सर्वशक्तिवान संसार की सबसे बड़ी हस्ती, बिगड़े हुए भाग्य को बनाने वाला हमारे साथ है। ओम शांति।